एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है सभी सुनने वालों का।
आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मतलब हर जगह है आजकल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs।
हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी और ऐसे नाम तो आप सब जानते हैं।
सही। और इसी दुनिया को थोड़ा और समझने के लिए हम आज स्टीफन रेमार्कस की किताब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उससे मिली जो खास बातें हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। मैं हूं आपकी साथी मेजबान
और मैं हूं आपके साथ इस चर्चा में। देखिए, ये टॉपिक आज इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो एआई है, खासकर ये भाषा वाले मॉडल, ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं रह गए हैं अब। ये हमारे काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, जानकारी कैसे ढूंढते हैं, यहां तक कि हम सोचते कैसे हैं, उसको भी बदल रहे हैं।
बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस तकनीक के पर्दे के पीछे क्या है उसे देखें। ये LLMs आखिर हैं क्या चीज, कैसे काम करते हैं,
हाँ, क्या कर सकते हैं और कहाँ पर, मतलब इनकी सीमाएं हैं,
और सबसे जरूरी, हम पर, समाज पर इनका असर क्या पड़ रहा है। तो रेमार्कस के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ तो शुरू करें लेखक से ही। ये स्टीफन रेमार्कस कौन है ये?
हाँ, तो स्टीफन रेमार्कस, देखिए, वो कोई बाहर से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार नहीं है। वो खुद AI, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा विज्ञान, और NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इस फील्ड में एक अनुभवी रिसर्चर भी हैं और प्रैक्टिशनर भी।
अच्छा, मतलब वो खुद इस फील्ड में काम करते हैं।
जी हाँ, नीदरलैंड्स में एक जानी मानी संस्था है TNO, वहाँ सीनियर साइंटिस्ट हैं।
और शायद यही बात उनके नज़रिए को खास बनाती है ना? वो एक इनसाइडर हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है।
सही कहा।
उन्होंने शुरू के जो नियम आधारित सिस्टम थे उनसे लेकर आज के जो एकदम मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हैं उन सब पर काम किया। तो उनके पास सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं है बल्कि एक गहरी समझ भी है कि ये चीज़ें कैसे बनी, क्यों बनी, कैसे विकसित हुई।
बिल्कुल। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बारीकियां नहीं समझाते बल्कि उसका जो बड़ा सामाजिक असर है उस पर भी बात करते हैं, और उनका नजरिया मुझे काफी संतुलित लगा। मतलब ना तो वो बेवजह का डर फैलाते हैं,
हाँ
ना ही एकदम बढ़ा चढ़ा कर तारीफ है, वो असलियत समझने में मदद करते हैं।
तो ये किताब रेमार्कस की, ये है किस बारे में, एक ओवरव्यू दें तो?
देखिए, ये किताब LLMs को समझने के लिए एक तरह की गाइड है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो तकनीक में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं, जैसे डेवलपर्स हों, स्टूडेंट्स हों, या फिर बिजनेस से जुड़े लोग। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए है।
हाँ, मतलब ये सिर्फ कोड और एल्गोरिदम की बात नहीं है इसमें। ये समझाती है कि ये मॉडल आखिर इतने जरूरी क्यों हो गए हैं। किताब हमें एलएलएम्स को किसी, क्या कहते हैं, जादुई ब्लैक बॉक्स की तरह देखने से आगे ले जाती है। उनकी बुनियाद समझने में मदद करती है कि ये सीखते कैसे हैं, ये भाषा बनाते कैसे हैं।
किताब का एक बड़ा आइडिया ये है कि LLMs जो हैं वो AI की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल चेंज ला रहे हैं। ये सिर्फ मशीनों की क्षमता नहीं बढ़ा रहे बल्कि हमारी अपनी समझ को भी चुनौती दे रहे हैं कि भाई बुद्धिमत्ता क्या है, हम संवाद कैसे करते हैं, इंसान और मशीन का रिश्ता आगे कैसा होगा।
और रेमार्कस इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ये कोई, मतलब, रातों रात हुआ जादू नहीं है।
हाँ हाँ
ये दशकों की मेहनत है। कंप्यूटर साइंस, भाषा विज्ञान, स्टेटिस्टिक्स, इन सब में जो रिसर्च हुई है उसका नतीजा है ये। एक लंबी कहानी है इसके पीछे।
और वो ये भी बताते हैं कि इनकी जो कमाल की क्षमताएं हैं वो तीन मुख्य चीजों के मिलने से आती हैं। एक तो है इनका आर्किटेक्चर, वो ट्रांसफॉर्मर वाला।
ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। दूसरा वो विशाल डेटा जिस पर इन्हें ट्रेन किया जाता है, इंटरनेट से लिया हुआ टेक्स्ट।
ढेर सारा डेटा।
और तीसरा कंप्यूटिंग पावर में जो जबरदस्त उछाल आया है जिसने इतने बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग को मुमकिन बनाया।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कंप्यूटर के लिए इंसानी भाषा हमेशा से इतनी मुश्किल क्यों रही है।
हाँ, ये पहेली एक तरह की। हमारी भाषा में कितने सारे मतलब होते हैं, है ना? एक ही शब्द के कई मतलब, फिर कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का महत्व, और दुनिया की वो समझ जो हम इंसानों को बातों बातों में होती है।
बिल्कुल। और पहले कोशिशें भी बहुत हुईं कंप्यूटर को भाषा सिखाने की। कुछ ने सोचा चलो व्याकरण के पक्के नियम बना देते हैं,
सिंबॉलिक AI जिसे कहते थे।
और कुछ ने आंकड़ों पर, पैटर्न पर ध्यान दिया, स्टैटिस्टिकल NLP, यहाँ तक कि दिमाग से प्रेरणा लेकर शुरुआती न्यूरल नेटवर्क भी बने। पर सब में कुछ ना कुछ कमी थी।
कोई भाषा का असल मतलब नहीं पकड़ पाता था, कोई लंबे वाक्यों में उलझ जाता था, या फिर वो बहुत धीमे थे। वो भाषा की जो बारीकियां हैं, उसका लचीलापन है, उसे संभालने में दिक्कत आती थी। फिर आया 2017 का वो मशहूर रिसर्च पेपर, नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड।
हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है।
इसने सब कुछ बदल दिया। इसने पेश किया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर।
और इस ट्रांसफॉर्मर की सबसे खास बात क्या थी जिसने इतना फर्क पैदा किया?
इसकी सबसे बड़ी खूबी है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म।
सेल्फ अटेंशन, वो क्या होता है?
इसे ऐसे समझिए, जब आप कोई वाक्य पढ़ते हैं, मान लीजिए मैंने उसे सेब दिया क्योंकि वो भूखा था, तो आपका दिमाग फौरन समझ जाता है कि वह कौन है, मतलब उसे के लिए आया है।
हाँ ठीक है।
सेल्फ अटेंशन भी कुछ ऐसा ही करता है। मॉडल जब एक शब्द को प्रोसेस करता है, तो ये मैकेनिज्म उसे पूरे वाक्य में मौजूद दूसरे शब्दों को देखने में मदद करता है, और ये तय करता है कि कौन से शब्द उस खास शब्द का मतलब समझने के लिए सबसे जरूरी हैं, चाहे वो वाक्य में कितनी भी दूर क्यों ना हो।
अच्छा, यानी ये शब्दों के बीच के कनेक्शन को, उनके रिश्ते को पकड़ लेता है, चाहे वो पास हो या दूर।
बिल्कुल। और इससे दो बड़े फायदे हुए। पहला, इसने पुरानी तकनीकों की वो जो समस्या थी कि वो लंबी दूरी का संदर्भ भूल जाती थी, उसे हल कर दिया। दूसरा, ये पूरे वाक्य को एक साथ पैरेलल में प्रोसेस कर सकता है, एक एक शब्द करके नहीं। इससे ये बहुत तेज हो गया।
अच्छा, पैरेलल प्रोसेसिंग।
हाँ, और इसी वजह से आज के जो पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, GPUs, उन पे से ट्रेन करना संभव हो पाया। इसी ने इतने बड़े बड़े मॉडल बनाने का रास्ता खोला असल में।
तो ये आर्किटेक्चर तो मिल गया, अब बारी आई इसे लार्ज यानी विशाल बनाने की। यहीं से LLMs का असली सफर शुरू होता है ना, वो प्री ट्रेनिंग वाला फेज।
हाँ, प्री ट्रेनिंग। इसमें मॉडल को इंटरनेट से उठाए गए खरबों शब्दों वाले टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन किया जाता है। काम सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, बस ये अंदाजा लगाना कि वाक्य में अगला शब्द कौन सा होगा,
या अगर बीच से कोई शब्द गायब है तो वो कौन सा था।
हाँ बिल्कुल, मास्क्ड लैंग्वेज मॉडलिंग जिसे कहते हैं।
लेकिन इस सीधे साधे दिखने वाले काम का नतीजा बड़ा कमाल का होता है। राय मार्कस बताते हैं कि सिर्फ अगला शब्द सही बताने के चक्कर में मॉडल को व्याकरण सीखना पड़ जाता है, दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत तर्क करना सीखना पड़ता है, अलग अलग तरह से लिखना सीखना पड़ता है।
हाँ, ये सब अपने आप सीख जाता है। ये क्षमताएं उसे सीधे सीधे सिखाई नहीं जाती, ये उस ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान अपने आप उभर आती हैं। इन्हें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं।
इमर्जेंट प्रॉपर्टीज मतलब सिखाया कुछ और सीख गया बहुत कुछ।
बिल्कुल। और फिर रिसर्चर्स ने एक और चीज देखी, उन्होंने पाया कि आप जितना बड़ा मॉडल बनाते हैं, जितना ज्यादा डेटा देते हैं और जितनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगाते हैं ट्रेनिंग में,
मॉडल उतना ही बेहतर होता जाता है।
हाँ, और वो भी एक प्रेडिक्टेबल तरीके से, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मॉडल बनाने पे कितना सुधार होगा। इसे स्केलिंग लॉज कहा गया।
अच्छा, स्केलिंग लॉज।
इसी वजह से फिर बड़ी बड़ी कंपनियों ने और बड़े मॉडल बनाने में इतना पैसा लगाया। लार्ज यहीं से आया।
लेकिन सिर्फ बड़ा और शक्तिशाली होना तो काफी नहीं है, है ना? एक प्री ट्रेन्ड मॉडल, वो तो शायद मददगार ना हो या उलझुलूल बातें करने लगे, यहीं पर फिर वो फाइन ट्यूनिंग और अलाइनमेंट का रोल आता है।
बिल्कुल सही। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि मॉडल को किसी खास काम के लिए और तैयार किया जाता है। जैसे अगर मेडिकल सवालों के जवाब देने वाला चैटबॉट बनाना है, तो उसे मेडिकल जानकारी वाले डेटा पर और ट्रेन करेंगे।
स्पेसिफिक ट्रेनिंग।
और अलाइनमेंट का मतलब है मॉडल के व्यवहार को इंसानी उम्मीदों के मुताबिक ढालना, मतलब वो हेल्पफुल हो, नुकसान ना पहुंचाए और सच बोलने की कोशिश करे।
ये जरूरी है। तो ये कैसे करते हैं, वो RLHF वाली तकनीक?
हाँ, RLHF यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। ये आजकल काफी इस्तेमाल होती है।
ये काम कैसे करती है, थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे?
इसमें इंसान शामिल होते हैं। वो मॉडल के दिए गए जवाबों को देखते हैं और उन्हें रेट करते हैं, बताते हैं कि कौन सा जवाब ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा मददगार है, कौन सा ज्यादा सुरक्षित है।
अच्छा, इंसान रेटिंग देते हैं।
हाँ, और मॉडल फिर इस इंसानी फीडबैक से सीखता है कि उसे किस तरह के जवाब देने चाहिए और किस तरह के नहीं। ये एक तरह से मॉडल को सही रास्ता दिखाने जैसा है, ताकि वो सिर्फ पावरफुल ना हो बल्कि उपयोगी और भरोसेमंद भी बने।
समझ गई। तो अब ये मॉडल ट्रेन भी हो गए, अलाइन भी हो गए, अब इनकी क्षमताओं की बात करें। राय मार्कस क्या बताते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं?
इनकी क्षमताएं तो वाकई मतलब हैरान करने वाली हैं। ये भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं, बड़े बड़े लेखों का सार बता सकते हैं,
समराइजेशन,
हाँ, कहानियां, कविताएं, यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड लिख सकते हैं, मुश्किल सवालों के जवाब दे सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में बात कर सकते हैं। आजकल हेल्थ केयर, शिक्षा, बिजनेस, मनोरंजन, आप नाम लें, हर जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है या होने की कोशिश हो रही है।
और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या चीज है जिसका जिक्र आजकल बहुत होता है?
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाँ, ये एक तरह की कला कह सकते हैं या स्किल, मतलब मॉडल से अपनी पसंद का नतीजा पाने के लिए उसे सही सवाल या निर्देश यानी प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाए।
अच्छा, जैसा सवाल वैसा जवाब।
बिल्कुल, लेकिन इन जबरदस्त क्षमताओं के साथ कुछ गंभीर खतरे और कमियां भी हैं। राय माकज उन्हें भी पूरी तरह सामने रखते हैं।
हाँ, वो जरूरी है, जैसे वो हैलुसिनेशन वाली समस्या। ये क्या है असल में?
हैलुसिनेशन का मतलब है मॉडल का पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसी बातें कहना जो सुनने में तो एकदम सही लगती हैं पर असल में गलत होती हैं। वो फैक्ट्स गढ़ सकता है।
ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि मॉडल असल में दुनिया को समझता नहीं है जैसे हम समझते हैं। वो बस पैटर्न के आधार पर सबसे संभावित अगला शब्द जोड़ता जाता है। कभी कभी वो पैटर्न उसे गलत रास्ते पर ले जाता है।
और वो पूर्वाग्रह बायस वाली बात।
हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये मॉडल सीखते किस पर हैं? इंटरनेट के डेटा पर। और इंटरनेट पर तो हर तरह की चीजें हैं, समाज में जो नस्ल, लिंग या दूसरी चीजों को लेकर पूर्वाग्रह यानी बायसेस मौजूद हैं वो सब उस डेटा में भी हैं।
तो मॉडल वो सीख लेता है।
हाँ, वो उन पूर्वाग्रहों को सीख लेता है और कई बार अपने जवाबों में उन्हें और बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
इसके अलावा गलत इस्तेमाल का खतरा भी है, मतलब गलत जानकारी फैलाने, नफरत भड़काने या धोखाधड़ी, स्कैम वगैरह करने के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है।
बिल्कुल, और फिर पर्यावरण की चिंता भी है। इतने बड़े मॉडल को ट्रेन करने और चलाने में बहुत बिजली खर्च होती है, और ये भी एक मुद्दा है कि ये टेक्नोलॉजी फिलहाल कुछ ही बड़ी कंपनियों के हाथ में है।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर।
हाँ, और एक और चुनौती है इनकी व्याख्यात्मकता या इंटरप्रेटेबिलिटी की कमी। मतलब ये समझना मुश्किल है कि मॉडल ने कोई खास जवाब क्यों दिया। वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं।
हाँ, ये तो भरोसे के लिए जरूरी है जानना कि फैसला कैसे हुआ।
सही बात।
तो इन सब चीजों का समाज पर क्या असर पड़ रहा है? रायमाकर्स क्या देखते हैं इस बारे में?
असर तो बहुत गहरा और व्यापक है। जैसे शिक्षा में ये पर्सनलाइज्ड ट्यूटर बन सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स इनसे अपने असाइनमेंट्स करवा सकते हैं, नकल की समस्या बढ़ सकती है।
हाँ, ये तो अभी से दिख रहा है।
फिर पत्रकारिता, लेखन, मार्केटिंग जैसे क्रिएटिव कामों में ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, पर नौकरियों पर भी खतरा है और मौलिकता का सवाल उठता है कि लिखा किसने है।
सही, वकील, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च के लिए, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने के लिए, मतलब काम करने का तरीका ही बदल रहा है।
हाँ, काम की प्रकृति बदल रही है।
तो भविष्य कैसा दिखता है फिर? क्या और भी बेहतर मॉडल आएंगे या कुछ और होगा?
रिसर्च तो जोरों पर है, कोशिशें हो रही हैं कि मॉडल ज्यादा कुशल बने, मतलब ट्रेनिंग में कम ऊर्जा लगे, उन्हें इंसानी मूल्यों के साथ और बेहतर ढंग से अलाइन किया जा सके। मल्टी मॉडल सिस्टम बन रहे हैं जो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, ऑडियो, वीडियो सब समझ सकें।
अच्छा, मल्टी मॉडल।
और हाँ, वो बड़ा सपना तो है ही, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, यानी इंसान जैसी या उससे भी बेहतर सोचने वाली मशीन। लेकिन इसके साथ नियम कानून, रेगुलेशन बनाने की चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं।
तो अगर हम रायमा केस की किताब के कुछ मुख्य संदेशों की बात करें तो क्या होंगे वो की थीम्स?
ये सोचना कि शायद जिसे हम इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता कहते हैं वो कोई बहुत रहस्यमयी चीज न होकर सिर्फ बड़े पैमाने पर डेटा और कंप्यूटिंग का नतीजा हो।
ये तो सोचने वाली बात है, ये हमारी खुद की समझ को भी हिला देता है।
बिल्कुल। दूसरा अहम संदेश है कि ये तकनीक एक दोधारी तलवार है। फायदे जबरदस्त हैं लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं, गलत सूचना, पूर्वाग्रह, मैनिपुलेशन।
हाँ, मतलब जो क्षमताएं इसे उपयोगी बनाती हैं वही इसे खतरनाक भी बना सकती हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है।
तीसरा, ये इंसान और मशीन के बीच की जो सीमाएं हैं उन्हें धुंधला कर रहे हैं। मशीनें वो काम कर रही हैं जो पहले सिर्फ इंसान कर सकते थे, जैसे क्रिएटिव राइटिंग।
हाँ,
ये सहयोग के नए रास्ते खोलता है, पर ये सवाल भी उठाता है कि इंसान की खासियत क्या है, हमारा मूल्य क्या है।
और वो स्केल के अतार्किक प्रभावशालिता वाली बात, अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ स्केल, वो भी काफी दिलचस्प लगी मुझे, कि सिर्फ मॉडल को बड़ा करने से ना सिर्फ वो बेहतर होता है बल्कि उसमें नई अनदेखी क्षमताएं भी पैदा हो जाती हैं।
हाँ, ये इमर्जेंस का ही हिस्सा है। और आखिरी बात जो बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक शक्तिशाली मॉडल बनाना काफी नहीं है, उसे उपयोगी, भरोसेमंद और सुरक्षित बनाना, यानी वो फाइन ट्यूनिंग और अलाइनमेंट वाला हिस्सा, वो उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कच्ची क्षमता को एक मददगार साथी में बदलना ही असल चुनौती है।
बिल्कुल।
राइमा कस कुछ ऐसी बातें भी कहते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे उनका ये कहना कि सवाल ये नहीं कि मॉडल सच में भाषा समझते हैं या नहीं, बल्कि ये कि क्या समझ मायने रखती है अगर नतीजा काम आ रहा है।
हाँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। फिलॉसफी से ज्यादा क्या ये काम कर रहा है?
और पूर्वाग्रह पर उनकी बात बहुत गहरी है। ट्रेनिंग डेटा सिर्फ जानकारी नहीं, वो मॉडल का नजरिया, उसका वर्ल्ड व्यू बन जाता है।
सही, ये बताता है कि डेटा कितना अहम है, और उसमें अगर कचरा है तो मॉडल के आउटपुट में भी वो दिखेगा। डेटा क्यूरेशन इसीलिए इतना जरूरी है।
एक उम्मीद भरी बात भी है उनकी। एआई का सबसे बड़ा फायदा इंसानों की जगह लेने में नहीं, बल्कि इंसान और मशीन के बीच सहयोग के नए तरीके बनाने में होगा।
हाँ, फोकस कोलैबोरेशन पर है, रिप्लेसमेंट पर नहीं। ये एक पॉजिटिव आउटलुक है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, लिखने पढ़ने के काम में, जैसे आपने कहा, ये कमाल के सहायक हो सकते हैं। आइडिया सोचने में मदद, पहला ड्राफ्ट बनाने में या भाषा सुधारने में।
हाँ, एडिटिंग वगैरह में।
लेकिन वो फाइनल जजमेंट, वो क्वालिटी चेक, वो इंसान का ही रहेगा। और हाँ, सही प्रॉम्प्ट लिखना सीखना पड़ेगा उनसे बेस्ट काम लेने के लिए।
और सीखने सिखाने में, एजुकेशन में,
वहां भी ये बहुत मदद कर सकते हैं। एक पर्सनल ट्यूटर की तरह मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। पर हमें और स्टूडेंट्स को भी ये सीखना होगा कि इनकी मदद लेते हुए भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बनाए रखें, नकल से कैसे बचें।
और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, लेखक, आर्टिस्ट,
उनके लिए ये एक टूल हो सकता है। एक साथी, नए आइडियाज जनरेट करने के लिए, अलग अलग स्टाइल आजमाने के लिए, या कहीं अटक गए हों तो वहां से निकलने में मदद के लिए। खतरे की तरह देखने के बजाय एक सहयोगी की तरह देखें।
और अपनी पर्सनल लाइफ में, रोजमर्रा के कामों में,
हाँ, जैसे कुछ प्लान करना हो, कोई जानकारी जल्दी से चाहिए हो, कोई नई स्किल सीखनी हो। पर यहां भी सावधानी जरूरी है, पूरी तरह इन पर निर्भर ना हो जाएं। ये समझना जरूरी है कि ये कहां गलती कर सकते हैं, कहां इनमें पूर्वाग्रह हो सकता है। सोच समझकर जिम्मेदारी से इनका इस्तेमाल करें।
तो आज की इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा सबक या टेक अवे क्या है?
मेरे लिए शायद यह है कि हम वाकई एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। इंसान और मशीन के रिश्ते बदल रहे हैं, और इसका भविष्य तय नहीं है। हम आज जो फैसले लेंगे, कैसे इन तकनीकों को बनाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे, वो इसका भविष्य तय करेगा। राइमा कस जैसे लोगों का काम हमें समझदारी और जानकारी देता है, ताकि हम डर या अंधे प्रचार के बजाय सोच समझ कर आगे बढ़ सकें।
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एआई लिटरेट बनना होगा, इसे समझना होगा, इसके साथ काम करना सीखना होगा, लेकिन अपनी आलोचनात्मक सोच और इंसानी मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना है। ये रोमांचक भी है और थोड़ी चिंता की बात भी, पर इसे नेविगेट तो करना ही होगा।
बिल्कुल, ज्ञान और सही इरादे के साथ।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।